اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. الحمدللہ ہم آیت نمبر 4 کر چکے ہیں شروع. ابھی تک جو باتیں کی ہیں ذرا سا دیکھ لیجئے. کورس کا نام کیا ہے؟ سب بولیں بنجانم مرسوس. اصل میں کیا کر رہے ہیں ہم؟ سورت صف کی ان ڈیپ تفسیر. اور ہم دیکھیں گے کہ سورت صف کی روشنی میں ہم بنجانم مرسوس بننے کے بارے میں کیا گائیڈ لائن لے سکتے ہیں. کیا عملی باتوں کے لیے سن رہے ہیں یا بس اور کچھ ذرا باتیں پتہ لگ جائیں گے؟ ہمیں گرامر بھی آ گئی اور لفظی وضاحت بھی آ گئی اور مترادفات بھی آ گئے. تو یقیناً ایسا نہیں ہے. تو آپ سوچئے کہ اگر کبھی آپ نے جب ڈرائیونگ سیکھی تھی تو وہ مشکل وقت تھا. پہلی دفعہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھنا اور پہلی دفعہ اپنے آپ کو گاڑی چلانے کے قابل کرنا یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے. لیکن ہم ایک رسک لے لیتے ہیں. پہلے دن ہمیں کوئی بھی ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں بٹھاتا, نہ ہمیں ہائی وے پہ لے جایا جاتا ہے. بالکل اسی طرح یاد رکھیے کہ بنجان المرسوس کے مراحل ہیں جو آج ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. آگے دیکھیے سورت کا پس منظر. ہم نے کیا دیکھا تھا؟ یاد ہے سب کچھ کہ یہ مسبحات کی صورتوں میں سے ہے اور اس سورت کا مین تھیم غلبہ اسلام ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ. آگے آیت نمبر 9 میں آ رہا ہے, انشاءاللہ ہم وہاں دیکھیں گے اس کو. اور یہ سورت یہ ہے کہ ایک موقع پہ کچھ لوگ بیٹھے تھے اور آپس میں بات چیت کر رہے تھے کہ اللہ کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں. تو اس پہ یہ آیت اتری تھی کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص. تو صحابہ کرام میں سے اکثر ہی جوش ایمانی سے بھرے ہوتے تھے تو وہ اس طرح کی گفتگو کیا کرتے تھے. تو اس پہ کہتے ہیں کہ یہ سورت نازل ہوئی تھی کہ اگر واقعی تم نے اللہ کی پسند کا بننا ہے تو تمہیں بنیان مرصوص بننا پڑے گا. اہل ایمان کے اوصاف میں سب سے بڑا وصف یہی ہے. پورے دین کو اگر آپ ایک نٹ شیل میں رکھیں. پھر لفظ بہ لفظ دیکھنے میں ہم نے پہلی 3 آیات کا خلاصہ دیکھا تھا. پہلی آیت کیا تھی؟ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. سبھی کو پتہ ہے. پہلی آیت سے آج 4th آیت تک کا ربط ابھی لے لیں. پچھلے سیشن کے شروع میں میں نے آپ کو پہلی 3 آیتوں کا ربط دیا تھا. گو کہ 4th شروع ہو چکی ہے, اس لیے اب آپ کو نمبر 1 آیت الگ کر دیجئے. سبح للہ ما فی السماوات والی آیت کو آیت نمبر 2, 3, اور 4 ان کا ایک گروپ بنائیے. اپنے نوٹس میں لکھیے کہ پہلی آیت میں کائنات کے اسلام کی بات تھی کہ وہ اللہ کے آگے تسبیح کرتے ہیں. لیکن آیت نمبر 2, 3, اور اب 4 جس کو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ, ان تینوں کا ربط کیا ہے؟ تو اگر آپ مصحف کو کھول کر ابھی بھی دیکھ لیجئے, بعد میں دیکھ لیجئے, جیسے بھی آپ کو ایزی لگے, تو پہلی آیت میں کائنات کا صرف ایک ہی کام دکھا اور وہ کیا تھا؟ کہ وہ تسبیح کرے. وہ تسبیح قولی ہے, وہ حالی ہے, وہ بیانی ہے, وہ جو بھی ہے, بس وہ ایک آٹومیشن پہ ہیں. اللہ نے ان کو جو کام دیا وہ کر رہے ہیں. آیت 2, 3, اور اب 4 یہ 3 آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ انسانوں کو یہاں پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ تسبیح تو وہی کرتے ہیں نا, صرف ان کے لیے وہی کافی ہے, لیکن تمہارے لیے یہ تسبیح کافی نہیں ہے. لہذا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو, تم وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اصل میں ایسے لگ رہا ہے کہ کیوں کہتے ہو کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, جب تم نے اس کے تقاضے نہیں پورے کرنے یا صرف بیٹھ کے تسبیحیں ہی پڑھنی ہے تو پھر یہ جملے نہ بولا کرو. ٹھیک ہے. پھر کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ بیزار ہے اس چیز سے, غصہ نہیں ہے اس کو, وہ بیزار ہے. فرق سمجھ گئے نا بیزارگی اور غصے کا؟ غصہ تب آتا ہے جب کسی کو کوئی کام کہیں اس سے امید ہو کہ وہ کرے گا, لیکن جب پتہ چلے نا اس نے نہیں کرنا, آپ کہتے ہیں یہ نہیں اٹھے گا, جاؤ بیٹا تم پانی لے کر آؤ, تو وہ بیزارگی کی کیفیت مقت ہوتی ہے. تو ہم یہ بھی دیکھ چکے کہ یہاں آیت 3 میں غضب کی جگہ مقت کیوں آیا. آیت 4 شروع ہوئی, جب ہو گئی ہے ہماری, ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا. اللہ بے شک ان لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ ہوتے ہیں. ہم نے اللہ کی پسند کو جاننے سے پہلے کائنات پہ اللہ کی حکومت کو مانا تھا کہ ہر ایک کی حکومت ہے تو اللہ کی کیوں نہیں، کائنات تو اللہ کی ہے، اور یہ اس کے صبور ہونے کا اظہار ہے کہ اس نے کچھ وقتی حکومتوں کو پنپنے کا موقع دیا ہوا ہے، حالانکہ وہ شرک پہ ہیں، وہ کفر پہ ہیں، وہ کچھ بھی ہیں۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی حکومت کفر پہ قائم رہ سکتی ہے، جیسے آج ہیں بہت سارے ایسے ملک ہیں جن کا ریلیجن از ڈسبیلیف، لیکن ظلم پہ نہیں رہ سکتی۔ تو آج غیر مسلم قوتیں اس لیے قائم ہے اور پنپ رہی ہیں کہ یہاں لوگوں کو انصاف ملتا ہے۔ یہ مت سوچئے کہ یہ ننگی ٹانگوں والے ہیں اس لیے ان کو سکون ہے، سکون اس لیے کہ وہ انصاف کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو کہتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا، تمہارے ملکوں میں انصاف کیوں نہیں اور تم کیوں ظلم کے پیامبر بنے ہوئے ہو؟ اب یہاں جو بات لفظی وضاحت کی ہو رہی تھی، سورت کا جو آیت کا ٹاپک ہے اس کا، وہ اجتماعیت کی اہمیت ہے، اور اصل میں مجاہد ہی اسلام کا وہ نیوکلیس ہے جس کے ارد گرد پورا دین، پورا اسلام گھومتا ہے۔ بنیانم مرسوس بننا، امپورٹنس آف یونٹی ہے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالنے پڑیں گے۔ لفظی ترجمہ ہم دہرا چکے، آگے گئے تو وہاں محاورہ ترجمہ تھا، میں پورا پڑھوں گی، آپ اس کو ذرا ذہن میں رکھیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت رکھتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ جہاد کرتے ہیں، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں یا عمارت ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کو آرگنائزڈ، ڈسپلن، کنسسٹنٹ، سب کو اردو میں بول دیجئے، منظم، نظم و ضبط والے، متحد لوگ پسند ہیں۔ جیسے ایک بلڈنگ کے اندر، ایک عمارت کے اندر سوراخ نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح مسلمانوں کی یونٹی اور مسلم کمیونٹی کے اندر کوئی سوراخ نہیں کر سکتا۔ گویا کہ اللہ کے محبوب اور اللہ کے مبغوث بندوں کے درمیان فرق بتایا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 2 میں کیا تھا؟ مبغوث، اللہ کو نہیں پسند وہ لوگ جو کہ قول و فعل کا تضاد رکھتے ہیں، اور یہاں کیا بتا دیا گیا؟ ایک لائن کھینچ کے بتا دیا گیا۔ آگے جب چلتے ہیں تو لفظ انا، بے شک، ان اللہ، لفظ اللہ پہ ہم نے تھوڑی بات کی تھی، اسی پہ روکا تھا نا، پتہ چلا اللہ کو اللہ کیوں کہتے ہیں، ذرا ایک ایک کر کے بول دے۔ نمبر 1 وجہ، وہ ذات جو حیران کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنے مارکوں کے ناطے سے ہمیں ہر وقت حیران کرتا رہتا ہے۔ اور دوسری وجہ، والذین آمنوا اشد حب للہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اللہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ تیسری وجہ جو کہ چھپا ہوا ہے، خود بھی چھپا ہے اور لیکن اس کے باوجود ہمیں دیکھتا ہے۔ چوتھی وجہ، وہ ذات جس کی عبادت کی جائے، یہی اصل میں ہم کہتے ہیں نا، لا معبود الا اللہ۔ تو گویا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی کی بات کر کے آگے دیکھیے، یحبو، وہ محبت رکھتے ہیں، حبہ دانے سے ہے، خوب اس سے ہے۔ محبت لفظ کے مترادفات ذرا اپنے سامنے دہرائیے۔ یہاں لفظ یہ کیوں آیا کہ ان اللہ یحب الذین، یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ ان اللہ ود الذین؟ اگر آپ اس کو سامنے رکھ لیجئے تو اللہ تعالیٰ کی ود کی بھی بات ہو سکتی تھی۔ تیسرا لفظ جو عربی میں محبت کا ایکویلنٹ ہے وہ ہے الفت، الف یؤلف تالیف، اسی سے لفظ ایلاف بھی ہے، سورت کا نام ہے نا، لی ایلاف قریش۔ پھر اسی طرح شغف، قد شغفہا حبہا، حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بولا گیا۔ اسی طرح عروبہ، جنت کی عورت جو اپنے شوہر سے پیار کرے گی نا، اس کے لیے لفظ عروب آتا ہے، فجعلناہن ابکارن عروبن اتروبا، یعنی اپنے لیے یہ گول بنائیے کہ اللہ آپ کو جنت میں لے جائے تو آپ نے وہاں اپنے شوہروں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان پیدا کرنا ہے۔ فجعلناہن ابکارا، یعنی جنت کی عورت ہمیشہ باقیرہ رہے گی، شوہر کو ہمیشہ ایسے ہی لگے گا کہ یہ میرے لیے پہلی دفعہ پیش کی گئی۔ اور اسی طرح سے عروبا، عروب کہتے ہیں جسمانی ابھار والی عورت، یعنی جو اللہ نے کروز رکھے ہیں عورت کے جسم میں اس پہ، اور اترابا کہتے ہیں ہمسن کو، ترب سے۔ یعنی آپ دیکھیے کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے نہیں رکھی؟ ساروں کا فرق لکھ لے کٹھے۔ حب کہتے ہیں کسی چیز کا ارادہ کرنا، اس کو چاہنا۔ کتنے اسباب حب لکھائے تھے میں نے آپ کو؟ 3۔ نمبر 1، لذت، ہمیں جس چیز میں لذت ہے، آپ کو نہاری میں لذت محسوس ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں لو نہاری۔ دوسری، نفع مندی، بچے کا ماں سے پیار یہی ہے، اس کو پتا ہے میں روتا ہوں تو یہی عورت اٹھ کے آتی ہے، اور سو آن۔ اور اسی طرح سے تیسرا، कोई फजल, कोई शरफ, कोई बंदा अच्छा काम करता है तो वो हमें अच्छा लगने लग जाता है। जैसे आप कहते हैं कि नकारे खुदा बन जाती है वो बात जो आवाज़ है खल्क हो। वुत कहते हैं हुब से अबलग को, यानी हुब जब बालिग हो जाती है ना, ऊपर पहुंच जाती है, तो उसको वुत कहते हैं। ज़्यादा मोहब्बत करना, प्यार करना, और ये भी याद रखें कि इसके अंदर इमोशंस होते हैं, सेंटिमेंट्स होते हैं। फिर अल्लफा युअल्लिफ होता है हम आहंगी की बिना पे शदीद मोहब्बत होना। कुछ मियाँ बीवी के अंदर हुब होती है, इरादा करना पड़ता है, क्या करें, मजबूरी और किधर जाए, लेकिन अगले कोई दर्जे नहीं होते। कुछ में वुद होती है लेकिन ज़हनी हम आहंगी कोई नहीं होती, और कुछ हम आहंग होते हैं तो करीब ही नहीं होते। यानी ये क्या बातें हैं। और शगफ उस मोहब्बत को कहते हैं जिसमें सीना फट जाए, इश्क या मोहब्बत, जो अक्सर आप फिल्मी और शायरी और पोइट्री में देखते हैं। और उरुब कहते हैं खावन से प्यार करने वाली औरत को। अल्लाह ताला हमें बनाए ऐसा कि जन्नत में जाके प्यार करना है, कह दे टाइम ही कोई नहीं, मैं आज सोना ही हूँ, मैं जन्नत में जाके आपसे बहुत प्यार करूँगी। वो बेचारे कहेंगे फिर जल्दी जाइए, देर किस बात की। देखिए एक औरत की कामयाबी यह है कि उसका शौहर उसको देखे तो उसकी आंखें ठंडी हो जाए। हदीस है, मैं अपने लफ्ज़ों में बोल रही हूँ। आपने कहा जन्नत के जिस दरवाजे में से चली जाए। अब यहाँ मुझे पता है आपके जिम्मे दसियों सवाल होंगे, अच्छा वो तो हमें ऐसा देखना चाहते हैं, वो वैसा देखना चाहते हैं, तो बनिए, आपको कौन रोकता है। कोई ज़रूरी है कि आपने कहीं जाते हुए बनना ठंडा है, आपने शादियों में जाते हुए बनना ठंडा है, आप बनिए उसकी आंखों की ठंडक, उसका शौक पूरा कर दे। पता नहीं, मुझे तो लगता है बायर्स काफ मिस होते होंगे आप लोग, अल्लाह की बना, और उसमें से भी लहसुन की बू और प्याज की बू, और कहते हैं जी दीनदार है, कुरान पढ़ रहे हैं, आप कैसी बातें करते हैं, आपको पता नहीं मैं कुरान अली हूँ। तो फिर मियाँ बेचारे रोएंगे तो और क्या करेंगे, फिर दीन हमारे लिए और उनके लिए गले की फांस बन जाता है। अपने आप को रिलैक्स रखा करें, हर वक्त एक ही गेटअप में देख के बंदा कहता है अल्लाह के लिए कभी तो अपने आप को चेंज कर लो। तो औरत की ये खूबी है कि वो शौहर से प्यार करे। और मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़े यकीन और शौर से ये जुमला बोलती हूँ, मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग रहते हैं हमेशा, जिनके शौहर दीन के कामों में उनके मुआविन हैं, उससे पहले औरतें उनको अपनी ज़ाती ज़िंदगी में खुश रख चुकी होती हैं। आप आज से 23 अगस्त 2021 है ना, आपकी शादी को 1-2 साल हुए हैं, या 10 हुए हैं, या 20 हुए हैं, इवन 30-40 साल हो गए, आजमा के देखिए। आजमाइश शर्त है, बच्चे की ख्वाहिश पूरी कर देना आप तो वो माँ की परवाह नहीं करता, और जिसको भूख लगी है वो री री करता पीछे फिरता, बच्चा रोता रोता आप कहते चुप करो मैं खाना पका रही हूँ, भाई एक दफ़ा उसको गोद में लेके 2-4 मिनट बहला लीजिए, सो जाएगा फिर काम कीजिए। हम ये जो री री करते हैं बच्चे और शौहर पीछे रखते हैं ना, इसलिए हमारे शौहर और बच्चे दुखी हैं, उनको इतना खपाएं कि वो के थोड़ी देर के लिए मेरी जान छोड़ दो, दूर चली जाओ, थक गया हूँ तुम्हें देख देख के। और लॉकडाउन में ये हुआ, लोगों ने कहा अल्लाह के वास्ते तुम थोड़ी दूर जरा पहले चली जाओ। तो याद रखिए हम गैर फितरी दीन पे होते हैं, इसलिए हमारा दीन लोगों को बुरा लगता है। अल्लाह ताला हमें समझ दे दे, जो चीज़ जहाँ अच्छी है, घर में ड्राइंग रूम है, कुर्सियाँ उधर अच्छी लगती हैं, बर्तन किचन में अच्छे लगते हैं, लेकिन ज़रूरत के लिए किचन में से बर्तन निकलते हैं, डाइनिंग रूम में आते हैं, ड्राइंग में आते हैं, आप मेहमानों के सामने जूसेस पेश करते हैं, जूं ही मेहमान जाएं वो बर्तन धो धा के वापस अलमारियों में रख दें। कपड़े, बर्तन, खाना, हर चीज़ का ही असूल है, इस्तेमाल के लिए निकालिए फिर वापस रख दीजिए। ये जो एक ही चीज़ और एक ही लाठी से हम हांकते हैं ना, ये दुरुस्त नहीं होता। और फिर वैसे ही जबकि दूसरी तरफ अमल में भी कमी हो। अब लोग कहते हैं कि अच्छा शौहर देख लेगा तो जन्नत मिल जाएगी, भाई शौहर को भी तो जन्नत पहले मिले ना, ऐसे शौहर के खुश होने से आपको जन्नत मिलेगी जिससे अल्लाह भी खुश हो। तो बहरहाल ये एक अलग मौजू है, जिसकी तरफ अभी ना जाए तो बेहतर है। आगे चलिए, अल्लज़ीना क्या होता है। अल्लज़ीना इसम मौसूल, चेन होती है ना, तो कड़ी में कड़ी है ना, कड़ी खुल गई तो गिल गई, तो अल्लज़ीना कनेक्टर है, मौसूल मिलाना, वसला से यूसिलो। कौन? युकातिलून, जो लड़ाई करते हैं। अरबी जुबान में दो लफ्ज़ हैं, मैं आपके सिर्फ इंटरेस्ट की खातिर बताई जा रही हूँ ये बातें, वरना तो शायद ना ही ज़रूरत होती। देखिए कभी कभी हमें पता नहीं चलता कत्ल और कत्ल का फर्क, यानी कभी लोग कहते हैं कत्ल का मानी लड़ना, और कभी कहते हैं लड़ना और मरना, सवाल समझे, तर्जमा नहीं याद होता सही। ता जो है ना इधर, काफ ता लाम आपके सामने है, आप देखिए ता पे जब जज़्म होती है ना तो इट्स टू किल, सीधी सी बात है वो मरना है, लेकिन ता पे जबर जेर पेश कुछ भी होती है ना तो ये लड़ाई है, यानी मैं कह सकती हूँ कि इस ता की जेर ने जेर होके कत्ल होने से अपने आप को बचा लिया। हम जब जुज बुज होके खड़े हो जाते हैं ना, फिर अगला हमें मार ही देता है। तो यकातिल उनका लफ्ज़ यहाँ किस मानी में फिर आया है? यहाँ अरबी के लफ्ज़ में लड़ाई के लिए आया है, लड़ना। और अगर ता की जज़म होती तो फिर इसका मानी क्या था, वो आपके सामने लिखा हुआ है। लफ्ज़ कत्ल क्या होता है? मौत। जैसे लफ्ज़ मौत है ना, इसी तरह कत्ल है, यानी जिस्म से रूह को ज़ाहिल करना, यानी मौत। सिंपल सी बात है कि आपके दो वायर थे, एक येलो और एक ग्रीन, वो उनका कनेक्टर उतर गया। कभी पाकिस्तान में वो टूटे फूटे स्विच यूज़ करते होंगे, डालते हैं तो इस्तेमाल नहीं होता, वो कहते हैं इसकी तार उतरी हुई है। दोनों होंगी तो बिजली जाएगी, एक उतर गया तो नहीं है। मौत जो है और कत्ल जो है, वो जिस्म और रूह के कनेक्टर का अलग होना है, फ़र्क एक है सिर्फ। मौत और कत्ल में फ़र्क क्या, लिखिए। अगर इस फेल को सर अंजाम देने वाले का एतबार किया जाए तो इसे कत्ल कहा जाता है, यानी कोई बंदा किसी को मार दे तो इसको कत्ल कहेंगे। लेकिन अगर कोई सिर्फ फौत हो जाए, तबई तौर पे उसकी रूह निकल जाए, तो इसको मौत कहते हैं। नबी सल्लम के ग़ज़वा उहद में जो भी हालात हुए थे, उस पर अल्लाह ताला ने कहा, भला अगर ये खुद मर जाएं या मारे जाएं तो क्या तुम दीन छोड़ दोगे? यानी नबी सल्लम का नाम लेकर दीन में आने वालों, क्या उनके दुनिया से जाते ही तुम ये सब छोड़ दोगे? तो छोड़ते हो तो फिर छोड़ दो, तुम अल्लाह का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकोगे, ठीक है। अलम तक्तुलूहुम वलाकिन अल्लाह कतलहुम, इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें। कुतिल इंसान हो, इंसान हलाक किया जाए, तो लफ्ज़ कत्ल समझ आ गया। लिखिए, लफ्ज़ कत्ल के या मौत के क्या मुतरादिफात हैं? व्हाट आर द सिमिलर वर्ड्स फॉर दी मौत? नंबर एक, कत्ल, जंग करना। वइन तवल्लो फ़खुज़ूहुम वक्तलूहुम हैसु वजदतुमूहुम। अगर तरके वतन को कबूल ना करें तो इनको पकड़ लो और जहां पाओ कत्ल कर दो। सफ़ा का दूसरा लफ्ज़, आलू अतजल फीखा में युफसिदु फीखा व यस्फिकुद्दीमा। याद आए, फरिश्तों ने जो हज़रत आदम की पैदाइश के मौके पर एक सवाल उठाया था, क्या आप इसमें ऐसे शख्स को नायब बना रहे हैं या खलीफा बना रहे हैं जो खराबियां करेगा? तो यहाँ सफ़क है, अभी फ़र्क भी हम देखेंगे। फिर तीसरा लफ्ज़ है हस्सा, दो सीन है, हा सीन सीन। वलकद सदक़कुमुल्लाहु वादहु इज़ तहुस्सूनहुम बिज़्नी। ये भी ग़ज़वा उहद के तनाजर में सूरत आल इमरान में आया कि अल्लाह ने तो अपना वादा सच्चा कर दिया था। कब? जब ग़ज़वा उहद का इब्तदाई दौर था, यानी उस वक़्त जबकि तुम काफिरों को इसके हुक्म से कत्ल कर रहे थे। चार लफ्ज़ हैं, फ़र्क लिखिए। कत्ल आम लफ्ज़ है, मारने के लिए, किसी को भी मारना है तो। सफ़ा का खून बहाने के लिए आता है। उर्दू में आपने कभी सुना है सफ़ाक, सफ़ाक कातिल, नाजायज़ कत्ल के लिए आता है। ज़ाहिर है कि जब कोई किसी को कत्ल करता है तो वह नाजायज़ ही करता है। हस्सा कहते हैं चुन चुन कर मारना, दुश्मन की जड़ काट देना, ठीक है। और एक लफ्ज़ आता है असखाना, बेदरेख कत्ल करना, यानी जिसको मुसला कह दीजिए, जितना मुमकिन हो कत्ल करते ही जाना। अल्लाह अकबर कबीरा, एक सिर्फ कत्ल के लिए चार लफ्ज़ हैं अरबी ज़ुबान में। अल्लाह ताला हमें इसके लिए वक्त लगाने वाला बना दे। आगे देखिए, फ़ी सबीली ही युकातिलूना, किधर किधर लड़ाइयाँ करते हैं? माल के लिए, डाके डालते हैं लोगों से पैसे वसूल करने के लिए, अगवा बराए तावान के लिए नहीं, फ़ी सबीली ही उसके रास्ते में। कितना मारूफ लफ्ज़ है हमारे कल्चर में सबीलिल्लाह, आइए ज़रा इसको समझिए। देखिए, सबील सुबुल से है रास्ता, असल में उस रास्ते को कहते हैं जिस पर सहूलत से चला जाए। कुरान पाक में कहते हैं वन हारम व सुबुला, सीधे रास्ते होते हैं ना, उसको ज़हन में ले आइए। और इसी तरह से अनिस सबील का लफ्ज़ आता है, हक का तरीक, तरीकुल हक, हक का रास्ता, उसको भी सुबुल कहते हैं। असल में आपको पता कि सबील क्या है? रस्सी के दो सिरे। रास्ता क्या करता है अमूमन? एक तरफ वाले को दूसरी तरफ मिलाते हैं। आप एटलांटा से निकलते हैं और इंडिया पहुंच जाते हैं, तो जहाज़ में आप बैठे तो एटलांटा से, अगर आप वो देखिए कभी जहाज़ में स्क्रीन पे दिखाते हैं ना आपका पूरा रूट, अभी यहाँ हैं फिर आप यहाँ जाएंगे तो वहाँ पहुँचेंगे, तो वो जो रास्ता होता है ना उसको सुबल कहते हैं। जब ये बात आप अल्लाह ताला के लिए पढ़ते हैं फ़ी सबीलिल्लाह, इसको भी समझ लें साथ ही, फ़ी सबीलिल्लाह हर वो कोशिश, हर वो काम जो बंदे को रब से मिला है, सीधी सी बात है। वो जान जाती है तो जान जाए, माल जाता है तो माल जाए, हर लिहाज से बंदा रब के सामने खड़ा हो। हमारे यहाँ फीस वीलिला से मुराद पता क्या, टूटी हुई चीज़ें, फटे हुए कपड़े, और हर वो ख़राब चीज़ जिसको हम कहते जाओ इसको फीस वीलिला दे दो। शादी में किसी को $100 देना हो तो नया नोट निकाल के लाएंगे, और अगर किसी को देना हो चंदे में तो कहते हैं पहले तो सारा चेंज निकालो, टूटे हुए पैसे डाल दो। असल में अगर ये लव समझ आ गया ना तो हमें इस रास्ते की हर कोशिश, उसकी वैल्यू समझ आ जाएगी। एक बंदा मोमिन का हर काम, यहाँ चूंकि युकातिलू नफी से भी ली है तो इसी को साथ अगर जोड़ लीजिए तो वो काम जो बंदे को अल्लाह से जोड़ दे। आप एक बंदे को इस्लाम सिखाने के लिए कोई कोशिश करते हैं, वो भी फीस से भी ले लें। एक गैर मुस्लिम को आप इस्लाम देना चाहते हैं। फिर इसी तरह से आप देखिए कि सुम्बुला का लफ्ज़ आप सूरत बकरा में पढ़ते हैं, सनाबिल जिसकी जमा है बालियाँ, ग्रेन्स रहते हैं उसके ऊपर होती हैं बालियाँ, सूरत यूसुफ में भी इसका तस्कर आता है। यानी इन लफ्ज़ों से खेला करें, हाजी सबीली ये मेरा रास्ता है। मैं यहाँ सिर्फ एक चीज़ पर तवज्जो दिला के आपको इसके मुतरादिफात पे ले चलती हूँ। हम रोज़ दुआ क्या करते हैं, इहदीना सिरातल मुस्तकीम, हम ये क्यों नहीं कहते कि इहदीना सबीलल मुस्तकीम। इसके लिए ज़रा देखिए इसके मुतरादिफात। अरबी ज़ुबान में रास्ते के लिए 3 और 3 6 और 2 8 लफ्ज़ आते हैं। कौन कौन से हैं? एक लफ्ज़ है इमाम, हाईवे को कहते हैं, जो इंग्लिश में लफ्ज़ हाईवेज है ना, ये इमाम होता है। हमज़ा मीम मीम, फन तकमना मिन हम व इन्नहुमा लब इमाम मुबीन, पिछली कौमों का तस्कर है। अल्लाह कहते हैं ये दोनों बस्तियाँ हाईवे पे थी, यानी कौम शुएब और कौम लूत और पिछली कौमें जिन पर अल्लाह की तरफ से पकड़ आई थी वो मेन रोड्स पे थी। अरब लोग जब वहाँ से गुजरते थे तो उन। इसी तरह दूसरा लफ्ज़ है नजद, नजद वहदई ना हन नजदैन, हमने उसको दोनों रास्ते दिखा दिए, यानी खैर और शर के। तीसरा लफ्ज़ रास्ते के लेते हुदन, हुदन इन्नी आनस्तु नारन लाली आती को मिनहा भी कबसिन औ अजीदु अलन नारी हुदा। हज़रत मूसा गए मिस्र की तरफ, मदियन से बीवी साथ थी, दूर से एक चमक देखी तो कहा कि चलो मैं जाता हूँ, मैंने एक अंगारा देखा शायद कोई रास्ता मिल जाए। तो यहाँ हुदन का मानी रास्ते के लिए। फ़र्क क्या लिखे, तरीक़ का लफ्ज़ रास्ते के लिए काम लफ्ज़ है। अगर आप किसी सऊदी मुल्क में या अरब मुल्क में जाते हैं तो वहाँ सड़कों के किनारे क्या लिखा होता है, तरीक़, तरीक़ फलां, तरीक़ ये, ठीक है, तरीक़ उल जद्दा, तरीक़, ठीक है, रास्ता, तुरुक। सिरात का लफ्ज़ अब यहाँ समझ लें, इहदीना सिरात अल मुस्तकीम, ऐसा रास्ता जिस पर मुख्तात होकर चला जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर ये सिरात ना होता, अगला ही लफ्ज़ देखिए सबील, ऐसा रास्ता जिस पे सहूलत से चल सके और काफ़ी आमदोरफ्त रहती है, जिसको आप कहते हैं ना बिजी रोड। चलिए दोनों लफ्ज़ ऊपर नीचे हैं, मैं दोनों तरह पढ़ती हूँ। एहदीना सिरात अल मुस्तकीम, हम दुआ क्या कहते हैं, ए अल्लाह ऐसे रास्ते पे चलाना जिस पे मैं बड़ी एहतियात से चलूँ, केयरफुल। और अगर मैं कह दूँ एहदीना सबील अल मुस्तकीम, अल्लाह बस मुझे वो रास्ता दे जो बड़ा ही आसानियों वाला हो। हम अपनी नमाजों में रोज़ आसान रास्ता नहीं मांगते, हम मुख्तात रास्ता मांगते हैं। ये बंदे मोमिन की ज़िंदगी की रोड है। ये जो सिराते मुस्तकीम है ना, यही बाद में पुल सरात में बदल जाएगी, थोड़ा सा आगे जाने की देर है। जो आज दुनिया में सिराते मुस्तकीम पर डोल रहे हैं ना, वो वहाँ भी डोलेंगे। तो फ़र्क समझ आ गया। इस तरह एक लफ्ज़ आता है फज, फी फजिन अमीक, कुरान में आता है, वैली को कहते हैं, वादी, दो पहाड़ों के दरमियान खुला रास्ता, इधर भी पहाड़ है इधर पहाड़ है, बीच में एक रास्ता है जिस पे ट्रेवलर्स चलते हैं, फज। पांचवा लफ्ज़ इमाम, शाहरा खुली सड़क यानी हाईवे। छठा लफ्ज़ है नजद, किसी घाटी पर चढ़ने और उतरने की राह। फिर आप देखिए हुदा, भूले भटके इंसान को अगर ठीक रास्ता मिल जाए, मोहब्बत के साथ किसी को रास्ता दिखाने को हुदा कहते हैं। दुआ कीजिए हदीना सिरात अल मुस्तकीम। और सबब भी एक लफ्ज़ है, कहाँ गुजरा है, क्या पढ़ते हैं जुमे को, क्या आता है उसमें, फतबा सबबा। तो सबब कहते हैं रास्ता, मीन्स इंग्लिश में अब लिखे रिसोर्स, मीन सामान, रास्ता और जराए के मानों में। अब आप ये देखिए कि ये सारा कुछ जो आपको मुझे दिख रहा है, ये सब कुछ क्या है, इसको अपनी जहन में रखिए और फिर आप ज़रा सा इस लफ्ज़ के ऊपर गौर करके देखें तो आपको ये समझ आ जाता है। युकातिलूना फी सबीलिही, जो लोग उसके रास्ते में लड़ाई करते हैं, कैसे करते हैं? सफ़ा, सफ़ लफ्ज़ पे आ जाइए, जो उसके रास्ते में सफ़ बस्ता हो जाते हैं। कैसे सफ़ बस्ता होते हैं? आप लोग लिखिए, बस अपने नोट्स खुद लीजिए। सफ़े बनाने वाले, कैसे सफ़ बनती है? बहुत सीधे, बुनियानुम मरसूस, सफ़ा, सफ़ बनाकर। लफ्ज़ सफ़ को देखिएगा, स्वात फा फा है। क्या मानी होता है सफ़ का? किसी चीज़ को ख़ते मुस्तवी पर खड़ा करना। आप जानते हैं ना ख़ते इस्तवा ऐसा होता है, तो कोई चीज़ आप उस पर खड़ी करें, जैसे इंसानों को एक सफ़ में खड़ा करना या एक लाइन में दरख्त वगैरह लगाना, ठीक है। इसी तरह से सफ़ुन बमानी साफ़िन भी आता है। इन्ना अल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़ा। जो लोग अल्लाह की राह में ऐसे तौर पर खड़े हो जाते हैं, कदम जमा कर खड़े होते हैं, लड़ते हैं, वो अल्लाह के पसंदीदा हैं। हज़रत मूसा और जादूगरों का जब मामला था तो क्या कहा था फ़िरौन और उसके इर्द गिर्द के दरबारियों ने? सुम्मातु सफ़ा, फिर कितार बांध कर आओ। यानी वो जादूगर भी बड़े डिसिप्लिन अंदाज में मूसा के सामने आए थे। क़यामत के दिन क्या होगा? वजा रब्बुक वल मलकु सफ़न सफ़ा, और फरिश्ते कितार बांध कर आ मौजूद होंगे। और जो सफ़ बांधे उसको क्या कहते हैं? सौफ, उसकी जमा क्या होगी? साफ़ीन। और उसकी मुअन्नस क्या होगी? बस सौफ़ात। कुरान पाक में दो सूरतें लफ्ज़ सफ़ से हैं, एक आप में इस वक्त पढ़ रहे हैं और एक 23वें पारे में सूरत यासीन के बाद की सूरतों में सौफ़ात। यहाँ से देखिए कि इस्लाम हमें क्या बनाना चाहता है। दिन में 5 बार अल्लाह ताला उम्मते मुस्लिमा की सफ़ बंदी का अहतमाम करते हैं, ताकि इनको आज नमाज की सफ़े बनानी आ जाए, और बाहर जाएंगे तो फिर ग्रोसरी करते वक्त सफ़े बनेगी, और बढ़ते बढ़ते अगर कभी कोई हंगामी हालात आ गए कि दुश्मन सामने आ गया, तो फिर तो ये बहुत ही ज़्यादा सफ़े बांधेंगे। सफ़ सफ़ा कहते हैं हमवार मैदान को, स्ट्रेट प्लेन फील्ड, ठीक है। कुरान में आता है ना, फयजरूह कान सफ सफल ला तराफी है वजम वला अंता। क्यामत के दिन मैदान हशर ऐसे होगा, कोई टीला टिब्बा नहीं होगा कि कहीं कोई उसके पीछे ना छुप जाए। सायादार चबूतरा, छतरी की तरह एक होती है ना चीज़, ज़रा सा ऊंची सी जगह होती है उस पर साया डाल देते हैं, जिसको हमारे यहाँ बारादरी कह लीजिए, तो उसको अरबी जुबान में सुफ़ा कहते हैं। ये जो साबे सुफ़ा थे ना, वो भी यही थे। मस्जिद नबी इस तरह की नहीं थी जैसी आज है, ये वैसी थी जैसा कि आप कह लीजिए कि आज कोई छप्पर डाल के और उसमें होस्ट लाइट्स को रख ले, तो क्या पता चला कौन लोग जो बोना फी सबीलिल्लाह सफ़ा, जो अल्लाह के रास्ते में लड़ते हैं सफ़े बांध कर